ईश्वर का संबंध सनातन है, सीधा साधा है। हमारा और वस्तुओं का संबंध, हमारा और व्यक्तियों का संबंध माना हुआ संबंध है। माना हुआ संबंध, मान्यताएं बदलती है और वस्तुएं टूटती फूटती है, बदल जाता है। वास्तविक संबंध किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। वास्तविक संबंध को जानना है और माने हुए संबंध को अनासक्त भाव से निभाना है। आसक्ति से आदमी की योग्यताएं क्षीण हो जाती है। कर्म के फल की वांछा से अंतःकरण की योग्यता कुंठित हो जाती है। और फल तो जितना प्रारब्ध में होगा वो मिलकर ही रहता है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि ये बड़ी उपलब्धि है। जैसे फानस लालटेन कि कालीमा हटा देने से लालटेन का प्रकाश बाहर फैलता है, लालटेन के कांच की कालीमा हटाकर साफ सुथरा कर देने से लालटेन का प्रकाश बाहर फैलता है, वो चमकता है। ऐसे ही अंतःकरण की अशुद्धि मिटाने से परमात्मा प्रकाश, परमात्मा सामर्थ्य, परमात्मा आनंद, मतलब परमात्मा का दिव्य प्रसाद उस व्यक्ति के द्वारा निखरता है। परमात्मा तो सब में है और सबका सनातन स्वरूप है। जो नहीं पहचानते उनका भी वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, आप भगवान के सनातन अंश। फिर भी दुख, मुसीबत, शोक, चिंता, पीड़ा, मृत्यु, जन्म आदि जो कष्ट सह रहे हैं, ये सारे के सारे कष्टों का एक ही कारण है कि आपके और ईश्वर के बीच जो अज्ञान है वही सारी मुसीबतें दे रहा है। अंतःकरण के तीन दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल माना वासनाओं की भीड़, ये मिले ये मिले ये मिले ये खाऊं ये खाऊं, इच्छाएं। इससे वो अंतःकरण रूपी कांच मैला है और जितनी इच्छाएं ज्यादा होती है उतना चित्त ज्यादा विक्षिप्त रहता है, विक्षेप। तो मल, विक्षेप, तीसरा होता है आवरण। आवरण क्या होता है कि जो हैं उसको नहीं जानते, जो नहीं है उसको मानते। वास्तविक में जो हम हैं उसका फायदा नहीं उठाते और जो नहीं है उसी को संभाल सजा कर मर रहे हैं। इसी का नाम है अविद्या। ये अविद्या आने से, अविद्या को संभालने से, अविद्या होने से आदमी को सारे कष्टों का शिकार बनना पड़ता है। जो विद्यमान न रहे उस शरीर को मैं मानते हैं, सदा उसको विद्यमान रखना चाहते हैं। जो वस्तु विद्यमान न रहेगी सदा उसको संभालते हैं, क्यों? कि अविद्या का प्रभाव है मस्तिष्क में। अब बात रही दूर कैसे करें। अंतःकरण शुद्ध हो, कांच साफ हो तो प्रकाश दिखेगा ठीक से। तो अंतःकरण मलिन कैसे होता है और शुद्ध कैसे होता है, ये भी अपन लोग जानेंगे तभी तो फायदा उठाएंगे। सुख की लालच और दुख का भय, इन दो कारणों से अंतःकरण मलिन रहता है। बाहर की वस्तुओं से सुख लेने की लालच, और कोई वस्तु या व्यक्ति चला न जाए उसके दुख के भय। सुख की लालच और दुख का भय, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। सुख की लालच छोड़ दें और दुख का भय छोड़ दें तो अंतःकरण बस शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा प्रकाश, परमात्मा आनंद, परमात्मा मस्ती आने लगेगी। इसमें आहार शुद्धि, मंत्र जाप, सेवा, दान पुण्य, ये सब सहायक चीजें हैं। तो एक साधन होता है बहिरंग, दूसरा साधन होता है अंतरंग। जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं तो बहिरंग साधन माना जाता है, भगवान नाम का जप करते हैं तो वो अंतरंग साधन है, क्योंकि जप का अर्थ हृदय में है। जप का प्रभाव रक्त में, नस नाड़ियों में पड़ेगा। गुरुदत्त जप है, ये अंतरंग साधन है। जप का अर्थ समझते तो और अंतरंग साधन हो जाता है। अंतरंग माना आत्मा के निकट वाला साधन। जैसे गाड़ी को बाहर से रोकना, 10-5 आदमी खड़े होकर गाड़ी को रोक दे, ये बहिरंग है। और ब्रेक पर पैर रख के गाड़ी रोके, ये अंतरंग है। लाइनरों पर प्रेशर पड़ता है, बाहर से धक्का देके अथवा घोड़ा बोड़ा बांध के गाड़ी को घसीटना, दौड़ाना, ये बहिरंग है। और गाड़ी में मशीन फिट करके पेट्रोल देना, ये अंतरंग हो गया। ऐसे ही अंतःकरण की शुद्धि कुछ बहिरंग साधनों से भी होती है, अंतरंग साधनों से जल्दी होती, आसानी से होती। जैसे तीर्थाटन किया तो जिसका शरीर में अहम है, अपने 5 कोश हैं, कवर हैं उस अपने स्वरूप के ऊपर, 5 कवर हैं। जैसे बादाम रोगन पर 5 कवर है ना, बादाम का फल उसके ऊपर 1 कवर, फिर वो हरी हरी गिरी 2, फिर वो कठोर लकड़ी जैसी गिरी कवर 3, फिर लाल कवर 4, फिर वो सफेदी गिरी 5, उसके अंदर बादाम का तेल। ऐसे ही उस बादाम के फल की वैल्यू क्यों है, तेल के कारण। ऐसे मानव की वैल्यू क्यों है, कैसे, क्यों, आत्मा के कारण। तो जिसका अन्नमय कोश में ज्यादा स्थिति है, ऐसे आदमी को बहिरंग साधन अच्छा लगेगा। धार्मिक तो होगा लेकिन अंतर्मुख ध्यान व्यान मजा नहीं। तीर्थ यात्रा, मेहनत की भक्ति, जिसका अन्नमय कोश से कुछ अंतर है, मन प्राणमय कोश में है, उसको प्राणायाम, आसन, उपवास ही अच्छा लगे। जिसका मनोमय कोश में स्थिति है, उसको भगवान का भजन, कीर्तन, मंदिर, भगवान के नाम का जप, ध्यान अच्छा लगे। जिसका विज्ञानमय कोश में स्थिति है, उसको भगवान तत्व की कथा वार्ता के विचार उठेंगे और समझेगा भगवान क्या, ठाकुर क्या, कृष्ण क्या, तीर्थ क्या, मैं क्या, ये बात उसको स्पूर्ण भी होगा समझने की और अच्छी भी लगेगी जहां सुनाई पड़ेगा। तो अन्नमय कोश बहिरंग आदमी है, उससे प्राणमय कोश में जीने वाला आदमी थोड़ा अंतरंग, इससे मनोमय कोश में जीने वाला आदमी और अंतरंग है, इससे विज्ञानमय कोश में जीने वाला आदमी और अंतरंग है, उससे भी आनंदमय कोश में जीने वाला आदमी और अंतरंग है। आनंदमय कोश में जीने वाला आदमी साधक अगर किसी सदगुरु को मिल जाता है, काम बन जाता है। आनंदो ब्रह्म हेति परमात्मनो इति वेदांति। वेदांत वेताओं का परमात्मा कोई सगुण साकार कोई मूर्ति धारी किसी देश में बैठा है, ऐसा नहीं। आनंद स्वरूप परमात्मा है और तेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, वही है। एक विचार उठा और दूसरा उठने को उसके बीच की अवस्था, वो चैतन्य परमात्मा। बुद्धि को जो अनुकूल चीज मिलती है, मन को और जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता जहां से आती है, वो प्रसन्न स्वरूप परमेश्वर है, वही तू है, बाकी वस्तु और भोगने के साधन तू नहीं। इस प्रकार का गुरुदेव उपदेश दे और शिष्य का कल्याण हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। फिर 10 मिनट में समझ ले, 10 दिन में समझ ले, ये समझ कर उसमें टिक जाता है। तो ऐसा तो कोई कोई तैयार साधक मिलता है, इसलिए उसको साक्षात्कार हो जाता है। बाकी के लोग आत्म साक्षात्कारी पुरुष के संग में आएंगे तो जो अन्नमय कोष में जी रहे हैं, जैसे तीर्थ यात्रा, ऐसे रुपये पैसे पद संभाल कर जो सुखी होना चाहता है वो अन्नमय कोष में है। ऐसे पुरुष को जब गुरु मिल जाएंगे तो उसका एक कोष गुरु मुलाकात से, गुरु दृष्टि से, गुरु कृपा से, गुरु सानिध्य से, गुरु उनको कहते हैं हम जो अंधकार को मिटा के आत्म प्रकाश देने का सामर्थ्य रखते हों। अथवा तो उसका दूसरा अर्थ है आई इम्प्रेस न हो और ऊंचे से ऊंची स्थिति में, जैसे सुमेरु है, आंधी चले, तूफान चले, बाढ़ आए, सुमेरु को कुछ नहीं होता, हिमालय को कुछ नहीं होता। ऐसे जहां कुछ नहीं होता वहां जो टिके हुए पुरुष उनको गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु गोविंद से भी ज्यादा आदरणीय माने गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। ईशते अधिक गुरु में प्रीति, जानी करत सुजान। बोले ईश्वर से अधिक गुरु में प्रीति, हाँ ईश्वर की मूर्ति में श्रद्धा करोगे हृदय शुद्ध होगा, लेकिन वो मूर्ति उपदेश नहीं देगी, गलतियां नहीं काटेगी छांटेगी, संप्रेक्षण शक्ति बरसाएगी नहीं, लेकिन ऐसे पुरुष गलतियां काटेंगे छांटेंगे उपदेश देंगे और उसमें उनका संकल्प इनके भला हो ऐसे संकल्प से वो बोलेंगे। भागवत में ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष की महिमा में सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि भगवान में 30 गुण हैं उद्धारक शक्तियां जीव का भला करने का, और भगवत प्राप्त ब्रह्मवेता महापुरुष में 36 गुण होते हैं। ऐसे पुरुष जल्दी से मिलते नहीं, और मिलते हैं तो हम पहचान नहीं पाते, और पहचान लिया तो फिर माता के गर्भ में नहीं आते हम। ऐसे पुरुषों के लिए ही उच्च अवस्था पे पहुंचे हुए ऋषि ने गाया है, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करते ऐसे हमारे अंदर आध्यात्मिक संस्कारों की सृष्टि कर दें। गुरु विष्णु जैसे विष्णु जी पालन करते ऐसे हमारे आध्यात्मिक संस्कारों का पोषण करते हैं वे। गुरुदेवो महेश्वरा, हमारे गुरु क्या है कि महेश्वर है, शिव है। जैसे शिव जी प्रलय कर देते ऐसे हमारे अंदर जीव भाव के, राग द्वेष के संस्कारों को खत्म करते हैं। इससे भी ऋषि संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने देखा कि ये तो ठीक है, उत्पत्ति स्थिति और परलय हुआ, लेकिन उत्पत्ति स्थिति परलय के बाद भी जो नहीं मिटता उसका साक्षात्कार कराने वाले तो साक्षात ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै से गुरवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाक चक्षुर मिलितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर से जो हम भटक रहे थे, अगले जन्म की माँ के गर्भ में लटके थे, कभी किसी माँ का गर्भ मिला टिके और कभी ऐसे ही बह गए बाथरूम में, इस बात का तो नास्तिक आदमी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस जन्म में भी न जाने कितनी कितनी बार गर्भों में ट्राई करते करते बहे होंगे और अभी ये शरीर को गर्भवास मिल गया। ऐसा थोड़े कि सीधा गर्भवास मिल गया और पैदा हो गए होंगे, कई बार ऐसे ही बह गए होंगे और मर गए, साक्षात्कार नहीं किया तो फिर वही तो रूटीन होगी। पशु के गर्भ में भी टिकने का मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो पशु का कितना दुखी जीवन, मनुष्य का कितना सारा दुखी जीवन है। तो ये दुखद जीवनों से हटाकर मुक्ति के माधुर्य का अनुभव कराने वाले गुरु, उन गुरुओं का अनुभव है कि अंतःकरण की अशुद्धि इच्छा से, सुख की इच्छा से और दुख के भय से होती है। सुख की इच्छा मिटाना है तो सुख स्वरूप हरि का ध्यान और सुख स्वरूप परमात्मा के नाते संसार में व्यवहार करें तो सुख की इच्छा मिटेगी। सुख की इच्छा मिटते ही दुख का भय अपने आप चला जाएगा और मंत्र जाप करने से भी निर्भयता आती, सत्संग से भी निर्भयता आती। तो सुख की लालच दुख का भय मिटे। तो परम गुरु भगवान मनु महाराज का आह्वान किया राजा इक्ष्वाकु ने और प्रार्थना की कि भगवान राजपाट का सुख देख लिया, दिन दिन आयुष्य नष्ट हो रही है, सोने के बर्तनों में भोजन कर लिया, चांदी के रथों में घूम के देख लिया, लेकिन प्रभु कोई सहार नहीं, मुझ दास पर कृपा करो, मैं बड़ा दुखी हूँ। लोगों की नज़र से तो राजा दी राजनदाता महाराज हूँ, लेकिन विवेक से देखता हूँ कि क्या इस पृथ्वी पे मेरे जैसे कई पुतले आ गए, मौत के मुंह में दिनों दिन नजीक जा रहा हूँ, मेरे चित्त में बड़ा शोभ हो रहा है, मैं अनाथ बालक की नाई आपकी शरण हूँ। तब कृपा सागर प्राणी मात्र के परम सुहृद, आत्मवेता ब्रह्मवेता मनुष्य मात्र के नहीं जीव मात्र के सुहृद होते हैं, कृपामय वाणी से कहने लगे मनु महाराज कि हे राजा इक्ष्वाकु, तू नित्य अंतर्मुख रह, अंतर आत्मरूपी ईश्वर से तू जुड़ा रह, अर्थात आत्म ध्यान आत्म चिंतन और आत्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम कर, तू नित्य अंतर्मुख रहो, तेरे सारे क्लेश सारे दुख पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, घर में जो भोजन मिले सहज में आरोग्यता का ख्याल करके खा ले, ये चाहिए वो चाहिए, जीभ का स्वाद का गुलाम मत बन। मनु महाराज राजा इक्ष्वाकु को बोलते हैं और आशाराम महाराज अपने साधकों को बोलता है, जो भोजन मिले खा लो। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूँ, मुझे बड़ा पक्का स्मरण है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आज मेरे लिए ये सब्जी बनाओ, और अनजान कोई होता है सेवक तो पूछता कि क्या बनाए, तो मेरे को होता है कि क्या पूछ रहा है। कभी कभी नारायण आजकल कभी कभी पूछ लेता है ये बनाओ वो बनाओ, तो हृदय में आश्चर्य भी होता है और उसकी बेवकूफ़ी भी लगती है। क्या पता ये गुरुदेव की कृपा है, आप लोगों के आशीर्वाद है, लेकिन ये खाऊं ये खपे वो खपे, कब तक? जो होता है अनुकूल पड़ता है तो ठीक से खा लेते, नहीं तो थोड़ा कम खा के पेट भरना है। जीभ का स्वाद नहीं, इंद्रियों का स्वाद ज्यो ज्यो छोड़ते जाओगे त्यों त्यों आत्म स्वाद में तुम्हारा खूंटा गड़ता जाएगा, आत्म स्वाद में तुम्हारी स्थिति होती जाएगी, और ज्यों ज्यों आत्मस्वाद मिलेगा त्यों त्यों तुम सच्चे परमेश्वरीय सुख का आस्वादन करोगे और लोग भी तुम्हारे संग में आकर आस्वादन के भागी बनेंगे। जैसे लालटेन का कांच साफ है तो कांच तो चमकता है, लेकिन कांच के द्वारा दूर दूर तक प्रकाश जाता है, ऐसे तुम्हारा जीवन तो चमकेगा, तुम्हारे जीवन के द्वारा दूर दूर तक परमात्मा आनंद के वेव्स, परमात्मा मस्ती परमात्मा ज्ञान परमात्मा ध्यान के वेव्स दूर दूर तक फैलेंगे। हे राजन, तुम नित्य अंतर्मुख रहो, घर में जो भोजन हो मिले स्वाभाविक उसको खा लो, जहां नींद आए वहां सो जाओ, ऐसा बिस्तरा हो ऐसा गादी हो ऐसा तकिया हो ऐसा फलाना हो छोड़ो, जहाँ नींद आए वो सो वहाँ सो जाओ, जो वस्त्र मिल जाए वो पहन लो। एक आदमी आके, बापू तुम्हें खादीज पहरो छो, पहले हम खादी ज़्यादा पहनते थे। मैं कहा हाँ मैं खादी भी पहनता हूँ। क्या मैं तो खादी ना ज वस्त्रों जो तुम्हारे माटे मैं खादी लावी? मैं कहा हमारे लिए कुछ नहीं लाना, हमारा शरीर का जो प्रारब्ध है, जिस वक्त विधाता परमात्मा जिसको जो प्रेरणा करेगा, हमारा अपना शरीर नहीं तो खादी का कपड़ा हमारा कैसे, जो आएगा पहन लेते। जो वस्त्र मिले अंग ढकने के लिए मर्यादा के उस सामाजिक सोशल मर्यादा के इर्द गिर्द जो वस्त्र मिले पहन लिए, जो भोजन मिला खा लिया, जहाँ नींद आई सो गए। मुख्य काम यह है कि आत्मचिंतन, आत्मध्यान, आत्मज्ञान। गोरखनाथ ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसते खेलते जीवन निर्भर बनाओ। कई लोग ध्यान करते हैं तो भी अकड़ के, तो ध्यान करता है कि झगड़ा करता है, ध्यान करता है कि कुश्ती करता है। भगवान आनंद स्वरूप है तो पहले अपने हृदय को आनंद से भरकर फिर प्रवेश कर ध्यान में। विवेकानंद ठीक बोलते थे कि वॉलीबॉल खेलने के बाद गीता जितनी समझ में आएगी उतना कमरे में बैठ के मंदिर में बैठ के गीता उतनी समझ में नहीं आएगी। प्राणापान की गति विकसित होगी, चित्त प्रसन्न होगा, फिर गीता पढ़ो। तो कुछ लोग धार्मिक लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, उन्होंने धर्म की यात्रा की नहीं, यूनिफॉर्म की यात्रा की। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथीबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिस के संगा। खाए पिए लेकिन मन किसी में फंसने न दे, मन भंग न करने दे। पहले तो ऐसा खाते थे, अब क्या ऐसा टुकड़ा था। पहले तो ऐसा जीते थे, अब ऐसा जी। पहले तो गरीबी में जी रहे थे, अभी अमीरी में। पहले अच्छा पहनते थे, अभी घटिया पहन रहे। पहले घटिया पहनते थे, अभी अच्छा पहन रहे। इन तुच्छ चीजों को अपने अंतःकरण में मत भरो, मत आने दे। पहरता था शरीर, घटिया भी शरीर ने पहन लिया, बढ़िया भी शरीर ने पहन लिया, बढ़िया भी खा लिया, घटिया भी खा लिया। ये सब आतशबाजी का हाथी तो है। ऐसे ही ये शरीर आतशबाजी का पुतला है। इसका एड्रेस तो शमशान है। राम तीर्थ ने सिल्किन धोती मंगाई और पहरी। बोले, स्वामी जी आज तो आपका वट है, आप तो चमक रहे हैं, इतना बढ़िया धोती पहने गुरु जी। बोले, ये तो सती का सिंगार है, ये तो सती का सिंगार है, आखिरी जन्म है, लाल दिया किसी ने, पहन दिया, हो गया, सती का सिंगार है। इसकी बात क्या करते हो, मेरी बात करो, मैं कौन हूँ, तुम भी वही हो। मैं कृष्ण बनकर आया था, लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं राम बनकर आया था, लोगों ने मुझे नहीं समझा। मैं बुद्ध बनकर आया, लोगों ने मेरे को नहीं समझा। अब मैं राम तीर्थ बनकर आया हूं और मेरा कहना है कि तुम भी वही हो जो अनेक रूपों ले लेके आए। उसकी बात करो, सिल्किन साड़ी पहनी, घड़ियाल स्वामी राम तीर्थ ने पहनी, आपने क्या खाया, आपने क्या बोला, आपने क्या। हम कभी कुछ खाते ही नहीं, हम कभी कुछ पहनते नहीं। चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। आनंदमय कोश में जीता हुआ व्यक्ति अगर तत्व ज्ञान मिल जाए तो आनंद स्वरूप में टिक जाएगा।